मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृगुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति, ओम शांति। सभी स्वमानदारी सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, आज इस मधुबन धरनी पर, विशेष रूप से अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए पधारे हैं और साथ साथ बाबा से मिलने के लिए जो हमें बाप ने साकार के द्वारा इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का श्रृंगार किया है, वह श्रृंगारी हुई मूर्त बनकर जब हम बाप दादा से मिलेंगे, भले ही दृष्टि से मिले, दूर बैठे हुए मिले, परंतु अगर उस समय हम अपने स्वमान की सीट पर स्थिर है, तो वह मिलन कहाँ भी बैठे हैं ऐसे ही अनुभव होगा जैसे हम नज़दीक से मिल रहे। क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों को एक तरफ तो वरदान दिए हैं और साथ साथ स्वमान में रहने से हमारे अंदर कितनी शक्ति आती है, अर्थात हम शक्तिशाली बनकर स्वयं को, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर ऐसा तो नियंत्रण रहता है जो इतने तक अगर अभ्यास है और हमने स्वयं को अच्छी रीत से जाना है, पहचाना है और पहचान करके उसी स्वमान के सिंहासन पर बैठे हुए इन कर्म इंद्रियों से कार्य कराया है, यह अभ्यास हमारा बहुत समय से अगर अपने पर है तो बाप दादा से मिलने में जो आनंद और आनंद के साथ साथ वह शक्ति अनुभव होती है। क्योंकि हम सब अनुभवी है, जब हम पहले पहले बाबा के पास आते हैं तो पहला हमारा बाबा से मिलन, भले कोई जानते हैं या न जानते हैं, परंतु यह दृष्टि से मिलन जब बाप से होता है तो ऑटोमेटिक यह अपना देह भान भूल जाता है। जिनों को ये अभ्यास होगा कि मैं जो हूँ और जैसा हूँ, जैसे बाप के शब्द है, बाबा ने अपने स्वरूप की पहचान में यही शब्द कहे हैं, मैं जो हूँ और जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही जानते हैं। क्योंकि बाप को हम इस शरीरक चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं, परंतु जो हमारी दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र है, जिसको अधिकतर ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, उस तीसरे नेत्र के द्वारा अर्थात ज्ञान की दिव्य बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि के अंदर और कोई भी बात उस समय जब हम बाप से मिलते हैं उस समय और कोई भी बात हमारे बुद्धि में न रहे, बुद्धि इतनी क्लियर हो, क्लीन हो, जो बस जो हम सामने देखते रहें वो ही अंदर में उनकी शक्ति का अनुभव करते रहें। जब इस प्रकार हम अपने स्वमान में रहकर, अर्थात जो हमारा ओरिजिनल अनादि स्वरूप है, हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हैं अधिकतर तो वही भाई बहने हैं जिन्होंने इस ज्ञान को अच्छी रीत से समझा है, जाना है। वास्तव में मैं कौन हूँ, हमारा पहला इस ज्ञान में आने का लेसन, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, ये पढ़ाई है, ये है प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं, हम भविष्य में जा कर के शहजादा और शहजादी बनेंगे। अब ऐसा कोई कॉलेज न हुआ है न है जिसमें पढ़ाई पढ़े और भविष्य उसकी प्रालब्ध बने। इस जन्म में भविष्य स्टेटस वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं शरीर की आजीविका के लिए, और बाबा जब हम बच्चों को आके पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप सबसे निराला है और सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा बाप पहले हमें यही पहचान देते हैं, पहले हमको स्वयं की पहचान, इस शरीर को धारण करने वाली मैं कौन हूँ जानता हर एक है, मानता भी है, परंतु उस मान्यता को अच्छी रीत से, आत्मा मैं आत्मा क्या हूँ, मैंने इस शरीर को क्यों धारण किया है, किस लिए किया है, और इस शरीर के द्वारा मुझे किस प्रकार से अपना ये पार्ट बजाना है, उसको यथारथ रीति से, जिस लक्ष्य से बाप ने हमें इस सृष्टि मंच पर भेजा, वह लक्ष्य अभी इस समय में इस दुनिया में यथारथ रीति से कोई नहीं जानता है। भले ये सब कहते हैं मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, परंतु यह मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह सारा राज हमें बाप ने आके समझाया है। तो हमें पहले बाबा ने जो परिचय दिया है मैं कौन हूँ, साधारण रीति से हर एक जानता है, शरीर का नाम रूप काम धाम सब जानते हैं, ये भी मानते हैं इस शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा की शक्ति से यह शरीर काम करता है, परंतु मैं आत्मा हूँ, मैंने इन पांच तत्वों के बने हुए शरीर को धारण किया है, मैं आत्मा जो माना जाता है हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, कहावत है मान्यता है, परंतु उसकी यथारथ जानकारी न होने के कारण उसका विश्वास, उस निश्चय से अपनी जीवन को चलाना, इन कर्म इंद्रियों से उसी निश्चय के अनुसार मैं आत्मा जो हूँ और जैसी हूँ। जो हूँ और जैसी हूँ का अर्थ है कि वास्तव में मैं किसकी संतान हूँ। हर एक भगवान को याद करता है, सभी मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, पर यथारथ रीति से न परमात्मा को जानते हैं न स्वयं की आत्मा को ही पहचानते हैं। केवल मान्यता है, इतनी जानकारी है, शरीर में चेतन शक्ति आत्मा है जिसके आधार पर ये शरीर चलता है। तो पहला हमारा स्वमान अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर और मेरे सच्चे स्वरूप की क्वालिटीज क्या है, जो मैं आत्मा अनादि और अविनाशी हूँ, जैसे परमात्मा पिता अविनाशी है सत्य है, उसी प्रकार से ऐसे सर्वशक्तिवान बाप की संतान मैं आत्मा भी अविनाशी और अनादि हूँ। अनादि हूँ इसलिए मैं सत्य हूँ, अथवा कहें सत्य हूँ इसलिए मैं अनादि और अविनाशी हूँ। अभी आप सोचिए, जो अविनाशी वस्तु है और जो सदा सत्य है, अगर उसकी क्वालिटीज याद की जाए तो उसके अंदर क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या गुण होंगे व उनकी चेतनता कितनी महान होंगी, जो जब इस शरीर को धारण करते हैं तो उन महानताओं से अगर इस शरीर के द्वारा वह श्रेष्ठ कर्म कराती रहे तो शरीर में होते भी उनकी कितनी मान्यता बनी रहे। जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो बाबा ने भी आज मुरली में कहा है, बच्चे तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? कि हम जाकर के इस पढ़ाई के द्वारा हम जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, और जब बाप आकर के हमें यह ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। जब ये सारी नॉलेज सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का भाव है बाबा हमें समझाते हैं, समझाने पर हम समझ लेते हैं, परंतु जो हमें बात समझ में आती है उस समझ को हम बार बार स्मृति में ला करके और स्वयं ऐसी समझदारी से हम अपने जीवन में अपने कर्म इंद्रियों को चलाएं और उन कर्म इंद्रियों के द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म कराते रहें, जो हमारे से कोई ऐसा कर्म न हो जिसमें हमारा विकर्मों का खाता बने। क्योंकि मनुष्य जीवन के साथ ये कर्मों के गति का बहुत बड़ा संबंध है। जो भी हम कर्म करते हैं इस सृष्टि मंच पर, उन कर्मों का खाता बनता है, जिस कारण कहा गया है कर्मों की गति अति गहन है। अर्थात किस कर्मों से क्या प्रलब्ध बनती है, कौन से कर्म श्रेष्ठ है, कौन से कर्म भ्रष्ट है, भ्रष्ट कर्मों की रिजल्ट क्या है और श्रेष्ठ कर्मों की रिजल्ट क्या है। अगर ऐसा कहें, आज के दुनिया में ये भी हर एक जानते हैं, सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। झूठ बोलने में एक झूठ के ऊपर अनेक झूठ बोली जाती है, याद होगा कल की अव्यक्त बाप दादा के मुरली में भी यह बात आई थी कि बच्चे जब कोई भूल होती है तो उस भूल के लिए कितनी बहानेबाजी बताते रहते हैं, बनाते जाएंगे बात को, बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे, समझते हैं हम राइट करते हैं, परंतु सत्य न होने के कारण एक कर्म के पीछे उनको अनेक प्रकार के झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो हम आत्माएं जो सदा सत्य है, वास्तव में मैं आत्मा जो इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर हम आत्माओं का निवास स्थान कितना ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका ऊंचे ते ऊंचा धाम, परम धाम, और उस परम धाम में बाप के साथ हम आत्माएं जब इन पांच तत्वों के शरीर से न्यारे हैं, तब हम अपने बाप के साथ ऐसे ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में निवास करते हैं। उस निवास के बाद जब बाप हमें सृष्टि मंच पर भेजते हैं, तो यह सृष्टि मंच जहाँ हर एक आत्मा पाटधारी बन करके इस कर्म क्षेत्र पर आकर के अपना अपना पाठ बजाती है, इस सृष्टि मंच को कर्म क्षेत्र माना जाता है। अर्थात जब हम आत्माएं इन पांच तत्वों का शरीर धारण करके इस सृष्टि मंच पर आती है, किस लिए आती है, कर्म करते रहें और कर्मों के अनुसार जैसा जैसा कर्म ऐसा ऐसा उसका फल, जिसके आधार पर फिर हमारी जीवन एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्योंकि एक ही पाठ तो सदा नहीं बजा सकते। यह कर्म क्षेत्र का पाठ 5,000 वर्ष चलता है। उस 5,000 वर्ष के अंदर हम आत्मा जो अविनाशी है, अमर है, अजर है, कभी मरती नहीं, वह अपना पाठ बजाती आती। परंतु ये तो सहज हम समझ सकते हैं कि एक ही जन्म के अंदर हम 5,000 वर्ष पाठ नहीं बजा सकती। इसलिए जब थोड़े थोड़े समय के बाद फिर हम इस शरीर को छोड़ के दूसरा धारण करती है, जो फिर जैसे जैसे कर्म हम उस शरीर के अंदर करते हैं, उन कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य का जन्म होता है। इसलिए ऐसे अनेक जन्म लेते, अर्थात अनेक पाठ बजाते बजाते 5,000 वर्ष के अंदर कितने पाठ हमने बजाए हैं, वो भी हमें बाप से पूरी पहचान मिलती है। तो जो भी नॉलेज बाप ने हमें स्वयं के यथारथ स्वरूप की दी है, और बाबा ने हमें बाप की अर्थात स्वयं की पहचान, एक तो हमारी पहचान, आत्मा की पहचान, और आत्मा के साथ साथ परम आत्मा जो हम सर्व आत्माओं के बाप है, उस पिता की पहचान, वो भी बाबा के महावाक्य है कि मैं अपने स्वरूप की पहचान मैं स्वयं आकर के देता हूँ। क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा जब शरीर धारण करके पाठ में के बंधन में आ गई, तो वह आत्मा धीरे धीरे स्वयं के सच्चे स्वरूप अथवा बाप के सच्चे स्वरूप को भूलती ही जाती है। जिस कारण अनेक जन्मों के पाठ में धीरे धीरे भूलने के कारण हमारे कर्मों की भी जो रीत है, कर्म भी जो करते हैं, वो भी धीरे धीरे सच्चे स्वरूप को भूलने के कारण सृष्टि के अंदर जैसा संग मिलता है उस संग के रंग में आ जाते हैं, जिस कारण कर्मों के गति का भी बहुत विस्तार है। वो भी बाबा ने हमें समझाया है। श्रेष्ठ कर्म एक है, श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारा कर्म अकर्म बन जाता है, और भ्रष्ट कर्मों के आधार पर भ्रष्ट कर्म अर्थात विकारों के वश कर्म। तो हमें बाप ने जो स्वयं की पहचान दी है और उसके साथ अब इस संगम पर बाप ने पहचान दे करके और उसकी वास्तविकता बताई है कि वास्तव में हम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो हम बाप के साथ निवास तो करती लेकिन साथ साथ जब हम सृष्टि मंच पर पहले पहले आती है तो सारी विश्व की सर्व आत्माओं में जो हम पहली आत्माएं सृष्टि मंच पर आती है वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि एक तो पहले पहले अपना पाठ बजाती है और पहला पाठ इतना ऊंचा जिनों के अंदर सत्यता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, और उस दिव्यता की शक्ति के कारण कर्मों के अंदर वह दिव्य गुणों के आधार पर कर्म होने के कारण वह कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिन श्रेष्ठ कर्मों से उस समय जो हमारी जीवन है वह श्रेष्ठ, जिसको देवी और देवता कहा जाता है, जिनों का आज तक गायन और पूजन है वे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले। अब ये सारी बातें स्पष्ट, इसका वर्णन समय समय पर तो हम सुनते आए हैं। जब सुनते हैं तब तो हमें उस समय ध्यान रहता है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे अपने अंदर यह स्मृति सदा जागृत रहे, हम वो ही आदि अनादि आत्मा है। अनादि आत्मा अर्थात बाप के साथ रहने वाली आत्मा, और आदि आत्मा अर्थात पहले पहले सृष्टि मंच पर आई, जब ये सृष्टि ये कर्म क्षेत्र जिसके अंदर ऐसे सत्यता का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ सब कुछ संपन्नता है, सर्व प्राप्ति संपन्न गाया जाता है, देव अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। देखो देवताएं जिनों का पूजन चलता है उनकी मूर्ति को भी कितना सजाते हैं, और हम सबका सुना हुआ है शिव बाबा, जो शिव के मंदिर पहले पहले द्वापर में, जब शिव का मंदिर जिसको सोमनाथ नाम से गायन करते हैं, उसका मंदिर जब बनाया तो सोने का मंदिर बनाया, जिसकी कहानियां तो हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ी है, कैसे उस मंदिर को लूटते गए, और आज हमारा भारत, भारत के अंदर सोना चांदी ये सब कितना अथाह था। देवताओं की मूर्तियां देखते हैं तो कितनी सजी सजाई है। बाबा ने हमें वह स्वमान अर्थात जो पहले पहले जो हमारी जीवन इतनी ऊंची थी, इतनी श्रेष्ठ थी, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता है, बल्कि हम भी स्वयं स्वयं को भूल ही चुके, क्योंकि 5000 वर्ष पहले जब सृष्टि में पहला पाठ बजाया, किसको याद होगा? उनके बाद अनेक जन्मों के चक्कर में आते गए, जब चक्कर में आ गए, बाजोली खेलते गए तो कहाँ पहुंचे होंगे, वो हम देखते हैं अभी, कहाँ हमारा स्वर्ग जिसको सत्युग कहा जाता है। और आज कलयुग अति धर्म की गिलानी, धर्म के नाम को केवल नाम मात्र जानते हैं, लेकिन धर्म के श्रेष्ठ कर्म क्या है मानते हुए कोई करते नहीं। जो अपन को धर्म के नेताएं मानते हैं, वह भी यथारत रीति से अपने जीवन में वह श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए, इसलिए बाप को, स्वयं बाप को आना पड़ा, और बाप ने हम आत्माएं जो सृष्टि में पहले पहले आई, जो अनेक जन्मों के कारण अपन को भूल चुकी है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वमान को पहचानो। और स्वमान को बाबा कहते हैं स्वमान के सिंहासन पर सदा सेठ रहो। अब सिंहासन कोई स्थूल नहीं है, ये सारी बातें हमें अपने बुद्धि, दिव्य बुद्धि के आधार से समझनी है। तो पहले हमें अपने बुद्धि को दिव्य बनाना है। जब हम ये शब्द कहते हैं अपने बुद्धि को दिव्य बनाना है, तो हमें जब ये स्मृति बार बार, हम लोग जब शुरू शुरू में आए, जब बाबा ने ये यज्ञ की स्थापना की, यज्ञ स्थापना में जब हम शुरू शुरू में आए, और जब हमें ये पहला लेसन तू आत्मा है, उस समय दुनिया का वातावरण भी आज से, अगर आज के भेंट में कहें तो बड़ा शुद्ध था। शुरू से सुनने से ही बस जैसे जैसे पहचान मिलती गई, और उस समय यज्ञ स्थापन हुआ, शुरू था, तो बाप ने अपनी शक्ति से जो हमें पहचान दी, सुनते ही जैसे एक अपनी पहचान स्मृति में आ गई, और उस स्मृति से जैसे जैसे समझाते गए और सुनते गए, तो देह भान भूलता गया। और वह घड़ी जब ये अपना परिचय सुन करके देह भान को भूल जाए, और उस स्मृति में स्वरूप बन करके देह भूल गई, तो क्या याद रहा, कौन सा स्वरूप रहा? वह अपना अनादि, जो पांच तत्वों से परे है, जो पांच तत्वों की दुनिया से परे के निवास करते थे, वह अपना ओरिजिनल स्वरूप जैसे अपने को महसूस होने लगा, और उस महसूसता के अंदर ऐसे खो गए जैसे कि यह दुनिया अभी हमारे लिए है ही नहीं, और हम अपनी उस निराकारी दुनिया में, यह शब्द तो अभी कहते हैं, शुरू शुरू में इतनी नॉलेज स्पष्ट न होने के कारण ये शब्द नहीं थे, परंतु वो अनुभव रहा। और उस अनुभव के आधार पर शुरू में बाबा ने हम बच्चों को ये आत्म अभिमानी बन के रहना, उसका अभ्यास ऐसा पक्का कराया, जो चलते फिरते उठते बैठते मन के अंदर वही शुद्ध संकल्प चलता था, बाकी दुनिया का कोई संकल्प नहीं जिससे हमको युद्ध करके उसको मिटाना पड़े। क्योंकि बाबा की पहली पहली पधरामणि इस सृष्टि पर और गुप्त वेश में और उस गुप्त साधारण रूप को जो हम पहले पहले बाबा के बच्चे आए, उन्होंने आते ही जैसे कि दिव्य बुद्धि के द्वारा, क्योंकि एक तो बचपन में देखो बच्चे को कहा जाता है ये तो जैसे महात्मा, क्योंकि बच्चा शुद्ध होता है। दुनिया अभी के दुनिया के समय अनुसार भी वो समय बड़ा अच्छा था जिसमें इतने विकार इतना ये सब बातें, कर्मों का भी अपना ध्यान, हम किसको दुख न दें, कोई बुरा शब्द न बोले, जीवन में रहते, क्योंकि आदि आत्माएं थी। आदि आत्माओं के अंदर यह सत्यता का गुण, दिव्यता का गुण कुछ न कुछ अंत तक रहता ही आया, जिस कारण भल भक्ति में भी भगवान के प्रति अटूट प्यार, भक्ति के अनुसार ये सब बातें जब मिलाते हैं तो वह पहचान मिलने से जैसे जीवन के अंदर फौरन ही दुनिया, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी बातें, वो सब अपने बुद्धि से ऐसे किनारे हो गई जो मन के अंदर बस एक ही ये धुन, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं इस शरीर से न्यारी हूं, ये शरीर मुझे केवल कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है, और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, विश्व का रचयिता, विश्व का कल्याणकारी बाप, स्वर्ग का रचयिता, नई दुनिया बनाने वाला। बस जैसे जैसे बाप की महिमा याद आती जाए वैसे वैसे इस शरीर को भूलते जाए, परंतु केवल सुनते समय ही नहीं लेकिन अंदर में चलते फिरते उठते बैठते एक दो को देखते बात करते हर पल अंदर वो स्मृति बनी रहे और उसका अभ्यास अपने जीवन के अंदर ऐसा पक्का होता रहे जो आपस में बात करे तो भी ये स्मृति हे आत्मा, जब आत्मा कहा और स्वयं को आत्मा माना तो सोचो हमारे से शब्द कैसे निकलेंगे, दृष्टि हमारी कैसी होगी। तो शुरू के समय में बाबा ने हम बच्चों को ये पहला लेसन पक्का कराया, और बाप मैं किसकी संतान हूँ वो तो जैसे कि साकार में गुप्त होने के कारण, बल गुप्त था परंतु हम कहेंगे हम बच्चों के आगे तो प्रत्यक्ष ही रहा, जब हम यज्ञ में आकर के रहे, जिनों की पालना से हम आगे बढ़ते रहे, जैसे हम देखते थे साकार बाबा को तो हमें वह शक्ति अनुभव में आती थी जो स्वयं के देह को भूले रहते थे। इसका मतलब ये नहीं ऐसे भूल गए जो देह को चला न सके, परंतु ऐसी स्मृति अंदर से जागृत रही। तो पहला ये अभ्यास, और उस अभ्यास के साथ जैसे जैसे बाबा ये नॉलेज का विस्तार करता गया, उसको सहज समझते गए, समझते हुए और अपने जीवन के कर्मों में लाते रहे। कर्मों में लाने के कारण एक तो बुद्धि से पुरानी दुनिया और पुराने संबंध वगैरह जैसे भूल ही गए, स्मृति तक नहीं रहे क्योंकि बाप के साथ ही रहना हुआ, तो इस कारण कर्मों में वो श्रेष्ठता, जो बाप कहे वो ही करना है, वही अपनी तपस्या और यज्ञ सेवा, जिस कारण जो पूर्व का खाता वो कहें अंदर ही अंदर मिटता गया। जैसे कि पुरानी दुनिया से स्थूल में भी संबंध न रहा और बाप ने यज्ञ स्थापन किया, उसके अंदर ही हमारे कर्म करते रहे, तो वह कर्म जो पुरानी दुनिया के अंदर देह के संबंधों के साथ जो भी कर्म होगा तो कर्म बंधन का रहेगा, लेकिन बाबा के यज्ञ में कर्म बंधन का खाता नहीं परंतु दिव्य जीवन का खाता रहा। जिसकी भी मदद हमें उस स्मृति में रहने में मिलती गई, जो स्मृति बनी रहती थी। आज तो आप लोग दुनिया के बीच में हैं, शरीर निर्वार्थ कर्म करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, जो गृहस्थ व्यवहार ऐसा ही कहा जाएगा पूर्व खाते के अनुसार है, परंतु बाबा की वो शक्ति, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना उसका स्पष्टीकरण, कर्मों की गति, विकारों वश कर्म करने से विकार क्या है, विकारों का अंश कितना विस्तार है, वो भी बाबा ने हमें विस्तार से समझाया है। और देवताओं के जीवन में दिव्यता कैसे थी, स्वर्ग की जीवन क्या थी, वो भी बाबा ने हमें विस्तार से समझाया है। अब हम बच्चों को इसी बात पर विशेष ध्यान देना है, स्वयं की पहचान को स्मृति में रखकर, जिसके लिए बाबा ने हमें बीच में पांच स्वरूपों का अभ्यास कराया, अनादि निराकारी आत्मा, परंतु मैं वो आत्मा जो बाप के साथ, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे तेरे काम, ऐसे बाप के साथ मैं भी उस ऊंचे धाम की निवासी। कितना ऊंचा लक्ष्य और वो नशा। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर वो नशा रहे। अभी आप देखेंगे साकार मुरलियों के अंदर बाबा की हर मुरली में, बच्चे स्मृति रखो, हम वही आदि आत्माएं हैं, मैं बाप आदि आत्माओं में ही आकर के सन्मुख में मिलता हूँ। कितना ऊंचा सौभाग्य हमारा। बाबा की ये एक भी बात अगर हम अपने अंदर पक्की करके, ऐसा अपना सौभाग्य समझ करके, अपने कर्मों में वह दिव्यता जागृत करें, तो हमारा पूर्व का खाता। ये दो मुख्य बातें, एक बाप की निरंतर याद रहे और उस याद का आधार स्वयं के अनादि स्वरूप की स्मृति, साथ में कर्म करते जीवन में चलते हमें अपने आदि दिव्य स्वरूप, देवता स्वरूप की स्मृति, तो हम अपने अंदर दैवी गुणों को जागृत करते रहेंगे। तो एक तरफ मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, यह स्मृति अगर पक्की है तो हमारा, बाबा कहते हैं, अनेक जन्मों का खाता, जिसके अंदर विकर्मों का खाता भी भरा हुआ है, जिन विकर्मों से अनेक पाप कर्म होने के कारण जो विकर्म हमें दुखी और अशांत करते हैं, और कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, अगर हमारी याद पावरफुल, सदा हमारा उस पर अटेंशन है, और समय समय पर हम थोड़ा सा समय निकाल कर और देह भान को से स्वयं को दूर करके उसका अनुभव करते हैं, तो वो हमारा खाता, बाबा कहते हैं, अनेक जन्मों का खाता भस्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे समय बहुत कम है, वर्तमान समय हमें इस बात पर अपना पूरा ध्यान देना जरूरी है। जो बाबा भी देखो हमें काम दिया है, बार बार हम अपन को स्मृति दिलाएं, मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परम पवित्र पिता परमात्मा की संतान, मैं आत्मा कितनी पवित्र और शुद्ध। अपने अंदर हमें पवित्रता की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने का लक्ष्य रखना है। जैसे जैसे वो शक्ति हमारे अंदर इमर्ज होंगी, याद अर्थात बाप की स्मृति निरंतर बनती जाएंगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी, और शक्तिशाली आत्मा अपने इन कर्म इंद्रियों पर, न सिर्फ स्थूल कर्म इंद्रियों पर, परंतु ये चेतन शक्ति हमारी मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति, बुद्धि मुझ आत्मा की स्मृति, सोच समझ शक्ति, जो बाबा समझाते जाते हैं हमें समझ में आता है। समझने का मतलब केवल शब्दों से समझना नहीं, परंतु वो हमें अंदर से आत्मा को इस स्मृति के आधार से वो महसूसता आवे, मुझ आत्मा के वह कौन सी क्वालिटीज, जैसे बाप का गायन है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान का विस्तार कितना, तीनों कालों की नॉलेज, त्रिकालदर्शी बाप ने हम बच्चों को भी तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। इसलिए हमें सदा वो अंदर स्मरण चलता रहे, जिससे मन अर्थात जो संकल्प शक्ति है वो इस स्मरण से शुद्ध बनती जाएंगी, हमारे विचारों में अंतर आता जाएगा, जिस कारण वह शुद्ध श्रेष्ठ विचार हमें बाप की निरंतर याद में रहने में बड़े मददगार बनेंगे। और यह स्मृति की शक्ति, बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अर्थात हमारे बुद्धि में सदा ये स्मृति जागृत रहे, दैवी जीवन धारण करने वाली मैं आत्मा, दिव्यता संपन्न, जिसके अंदर जो आज पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आज तो देखो अहंकार इतना जोर है, बच्चे में भी अपनी रीति से अहम भाव भरा हुआ रहता है। हमें बाबा इस शरीरक अहम भाव को भूल, स्वमानधारी स्व का जो स्वरूप है, मैं किसकी संतान, सर्वशक्तिवान बाप जो करण करावनहार है, करण करावनहार बाप हम बच्चों से विश्व परिवर्तन का कार्य कराता है, उस कराने के लिए बाप ने हमें निमित्त बनाया है, उसके लिए हमें अपने संकल्प शक्ति को शुद्ध और श्रेष्ठ जरूर बनाना है, जिस श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से हम इन कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराते रहें। जो बाबा कहते हैं, बोल में मधुरता और सरलता, सबसे पहली बात हमारी वृत्ति और दृष्टि। वृत्ति के अंदर सदा सर्व के प्रति शुभ भावनाएं। जब वृत्ति हमारी शुभ बन जाती है तो सूक्ष्म कर्मों का खाता अंदर ही अंदर पुराना भस्म होता जाता है और अपने अंदर नए श्रेष्ठ कर्मों के विचार और कर्म जो हम इन कर्म इंद्रियों से कराएंगे वह श्रेष्ठ खाता जो हमें एक तरफ खुशी देता रहेगा। बाबा कहते हैं सदा हर्षोत्मुख रहो, साथ साथ आत्मा शक्तिशाली बनने के कारण निरंतर सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति बनी रहेगी और इन कर्म इंद्रियों पर अपना नियंत्रण, कोई ऐसा कर्म न हो, अंदर में मालिकपन की अथॉरिटी आत्मा इन शरीर के कर्म इंद्रियों की मालिक, मालिक माना जो मेरा शुद्ध विचार, जो मुझे बाप का डायरेक्शन, जो सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत, उनके अनुकूल ही मुझे इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है। बाप की श्रीमत और शिक्षाओं के अनुकूल ही जो हमें बाप पढ़ाई पढ़ाते जाते हैं उस पढ़ाई के अनुसार ही हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, जिन कर्तव्यों के आधार पर हमारी आगे की प्रालब्ध ऊंची, वही जो कलप पहले हम स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे, स्व का राज्य और विश्व राज्य अधिकारी, पहले संगम पर कर्म इंद्रियों का राजा था। कर्म इंद्रियों को जब पहचान है बाप की याद से, बाप की याद में रहकर श्रीमत के अनुसार इन कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म सदा सर्व को सुख देते रहें, सर्व के प्रति शुभ भावना रख करके जैसे बाप ने मेरा कल्याण किया, मैं औरों को भी बाप के कल्याण का रास्ता बता करके, बाप से संबंध जुटाकर, बाप से स्वराज्य विश्व का स्वर्ग का राज्य लेने के अधिकारी बनाए। ऐसी शुभ भावनाओं से हमारी वह दृष्टि बनी रहे। दृष्टि कभी भी हमारी देह भान स्वार्थवश ऐसा कोई हमारे से कर्म न हो, सदा ये चेतना अपने मन के अंदर जागृत रहे। जब इस प्रकार हम स्वमान की सीट पर रहकर कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराते रहेंगे तो हमारा मन सदा उस स्मृति में, शुद्ध विचारों में रहेगा, जिसको कहेंगे शुद्ध संकल्प। शुद्धता अपने वाइब्रेशन से वह शुद्धता का वायुमंडल बनता जाएगा, क्योंकि जब हम बने तो जिनों से हम मिलेंगे, जो हमारे से मिलेंगे, इतनी शक्ति हमें अपने में जागृत करनी है और उस शक्ति के आधार से जिसको कहती है स्वमान अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी बनकर हम अपने को सदा उस सीट पर सेट रखें। ओम शांति शांति।
बनो महान करो कल्याण।